सत्संग के ये वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। सत्संग के वचन। इससे पहले कि सत्संग शुरू किया जाए, आपकी सेवा में प्रार्थना की जाती है कि सत्संग का अर्थ क्या है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए। जहां एक परमेश्वर के नाम का जिक्र हो उसका नाम सत्संग है। हमारा यह सत्संग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मतलब कि जितनी कौमें हैं सबका साझा है। यहूदी हमारे सत्संगी हैं, मुसलमान हमारे सत्संगी हैं, सिख हमारे सत्संगी हैं, ईसाई हमारे सत्संगी हैं। हमारा प्यार सभी कौमों के साथ है। आजकल बंटवारे के मौके पर हम देखते हैं कि इतना जुल्म किसी बादशाह के वक्त नहीं हुआ जितना कि अब हुआ है। बेशुमार औरतों मर्दों और बच्चों का खून हुआ है। बेशुमार लोग भागे फिर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को लंगोटी नहीं, रहने को मकान नहीं। इससे पहले के जमाने का इतिहास देखो, ऐसा जमाना कभी नहीं आया। किसी ने इस तरह अपना मुंह काला नहीं किया। अगर डर के मारे मस्जिदों में इकट्ठे हुए तो फेंको बम, अगर गुरुद्वारों में जान बचाने के लिए इकट्ठे हुए तो फेंको बम। आप सोचो कि क्या वो मालिक इन्हें इस जुल्म का बदला नहीं देगा? क्या वे दोजख यानी नरकों में जाने का सामान नहीं कर रहे? या तो ये कह दो कि परमात्मा है नहीं, फिर जो मर्जी है करो, और वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों को समुद्र में बहा दो। जब वेद शास्त्र कुरान इंजील सब ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा आपके अंदर है और आप उन्हें सच्चा मानते हैं, फिर ये अत्याचार क्यों? आपको बड़े प्रेम के साथ समझाया जाता है कि यहां से ना मुसलमानों को जाना है, ना हिंदुओं को जाना है और ना सिखों को जाना है, यहीं का यहीं रहना है। फिर आप दुश्मनी क्यों करते हो? मोहब्बत से काम करो, एक दूसरे से प्यार करो और अमन चैन के साथ रहो। कोई लुधियाना जाता है, कोई लाहौर जाता है, कोई हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जा रहा है, कोई पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आ रहा है। कोई मजहब जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, मैं खुर ओ मुसहफ बसोज, ओ आतिश अंदर काबाजन, साकिने बुतखाना बाश, ओ मर्दुम आजारी मकुन। मुसलमानों में शराब पीना गुनाह है, लेकिन अगर तू शराब पी ले, कुरान शरीफ को जला दे और काबा को भी आग लगा दे तो शायद खुदा माफ कर दे, मगर आदमी का दिल न दुखा, ये महापाप है जिसकी माफी नहीं हो सकती। यही शेख फरीद कहते हैं, जे तव प्रियादि सिक हियाऊ न ठाहे कहीदा। हमें जानना चाहिए कि हमारा मजहब क्या कहता है। मुसलमान फकीरों और दूसरे महात्माओं की किताबें हौका दे रही हैं कि बचो बचो, मगर हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। हमें क्या इलाज करना चाहिए? जिस तरह है, जब किसी पर कोई मुकदमा आता है तो वो सयाने से सयाने वकील के पास जाता है। अगर कोई बीमार होता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है। इसी तरह हमारी रूहानी बीमारी के डॉक्टर संत हैं। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा रूहानी मार्ग है तो संतों का है, हमें उनके पास जाना चाहिए। जो नौ दरवाजे खाली करके सूरज चंद्रमा और तारा मंडल पार करके अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करके जीते जी सचखंड पहुंच जाए वो संत है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, ईसाई है या किसी और मजहब का। संत हिंदुओं में भी हुए हैं, मुसलमानों में भी हुए हैं, ईसाइयों में भी हुए हैं। इस कलयुग में संतों की तालीम में ही सुख है और किसी में नहीं। सुख ना गृहस्थ में है ना त्याग में। एक महात्मा कहता है, ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छड गया। दुनिया में सुख नहीं, کیونکہ نہ دنیا کو رہنا ہے نہ انسان کو رہنا ہے۔ اگر گرہست میں پھنسے تو بھی دنیا ہے، اگر گرہست چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے تو بھی دنیا ہے، کیونکہ وہاں بھی روٹی کی ضرورت ہے۔ اسی مہاتما کا کہنا ہے، نہ سکھ پاندی پنڈتی نہ سکھ پوپ پیاں، سکھ ہے وچ ویچار دے سنتاں شرن پیاں۔ کہ نہ ودیا میں سکھ ہے اور نہ راج میں۔ کیا ودوان سکھی ہیں؟ کوئی نہیں۔ کیا راجہ مہاراجا سکھی ہیں؟ کوئی نہیں۔ اگر سکھ ہے تو سادھو سنتوں کی شرن میں، بانی کے وچار میں۔ اور سنت کیا کہتے ہیں کہ جیتے جی مرو، اگر یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے تو نمرتا ہے، پریم پیار ہے۔ سنت ہمیں نمرتا سکھاتے ہیں۔ گرو نانک صاحب نے دھر دھام پہنچ کر بھی دم نہیں مارا، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ جو دھر دھام پہنچ گئے انہوں نے بھی دم نہیں مارا۔ میں تو ابھی یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں کہتا ہوں کہ میں سنتوں کا داس ہوں تو میں نے کیا برا کیا ہے؟ کبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں سب سے برا ہوں، مجھ سے سب اچھے ہیں۔ جس کا ایسا خیال ہو وہ میرا متر ہے۔ جب گرہست میں چین نہیں، تیاگ میں چین نہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہم اس دنیا سے ہی نکل جائیں۔
پاٹھ پڑھو اور بید بیچارو، نیولے بھوانگم سادھے، پنچ جنا سیوں سنگ نہ چھٹکیو، ادھک اہنگ بدھی بادھے۔
پانچویں پادشاہی، شری گرو ارجن صاحب اپنا تجربہ، پچھلے جنموں کی ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان میں کیا کیا کام کیے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بے شمار کتابیں پڑھیں، ویدوں پر وچار کیا، نیولی کرم کیا، آنتیں دھوئیں اور یوگا ابھیاس کیا، لیکن نہ کام گھٹا، نہ کرودھ گھٹا، نہ موہ گھٹا اور نہ اہنکار، بلکہ اہنکار زیادہ ہو گیا کہ میں عالم، میں فاضل، میں وید پاٹھی، بیماری اور بڑھ گئی۔ آپ سوچو، راون سے بڑھ کر ویدوں کا پاٹھ کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ چاروں ویدوں کا پنڈت ہی نہیں بلکہ ٹیکہ کار بھی تھا۔ راون کے وید بھاشیہ کے مقابلے کوئی وید بھاشیہ نہیں۔ مگر اس کی کرنی کیا تھی؟ اس نے سیتا کا ہرن کیا، جس کی رام لیلا میں نقل بنا کر ہم ہر سال جلاتے ہیں۔ سو بہت ساری کتابیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتابیں صرف واقفیت یا جانکاری دیتی ہیں۔ اگر کتابیں پڑھ کر عمل نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ کتابیں پڑھنے سے روح اندر نہیں جاتی، بلکہ ابھیاس کرنے سے جاتی ہے۔ تلسی صاحب کہتے ہیں، 4:18:9 پڑھے شٹ پڑھ کھویا مول، سرت شبد چینھیں بنا جیوں پنچھی چنڈول۔ اگر چار وید بھی پڑھ لیے، 18 پران بھی پڑھ لیے، 9 ویاکرن بھی پڑھ لیے، 6 شاستر بھی پڑھ لیے، لیکن اگر روح نام کے ساتھ نہ جڑی تو کوڑی کام کی نہیں۔ ہمارے اندر نام ہے، ہمیں اپنی روح کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ بانی کا ایک ایک لفظ کروڑ کروڑ روپے کا ہے۔ اگر ایک لفظ بھی ہردے میں بیٹھ جائے تو زندگی پلٹ جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ سوائے نام کے سارے کرم کیے، مگر کام، کرودھ، لوبھ، موہ، اہنکار نہ گھٹا اور ان کا ساتھ نہ چھوٹا، بلکہ اہنکار ہو گیا کہ ہم وید پاٹھی ہیں۔ یہ گرو ارجن صاحب ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ مسلمان فقیر بھی کہتے ہیں۔ بلے شاہ کہتے ہیں، علم و بس کریوں یار، اکو الف تیرے درکار، بہتا علم اسرائیل نے پڑھیا، چگا چاہا اسے دا سڑیا۔ سب عالم، سب ودوان ٹکریں مار مار کر رہ گئے، مگر اندر نہیں گئے۔ گرو نانک صاحب ہوکا دیتے ہیں، پڑھیے جیتے برس برس، پڑھیے جیتے ماس، پڑھیے جیتی آرجا، پڑھیے جیتے ساس، نانک لیکھ ہے اک گل، ہور ہومے چکھنا چاک۔ اگر روح اندر نہیں گئی، نام کے ساتھ نہیں جڑی، تو کچھ بھی نہیں بنا۔ ہم پاٹھ کرتے ہیں، بجائے چھوٹنے کے اور بندھ گئے۔ جیوں بچپن سے گیتا پڑھنی شروع کی، सारी उम्र गीता ही पढ़ते रहे। उनसे पूछो कि अंदर रोशनी हुई, कोई नहीं। अंदर कृष्ण भगवान मिले, कोई नहीं। जो तप आदि करते हैं उनसे पूछा कि कभी अंदर पर्दा खुला है, कोई नहीं। अगर मिश्री मिश्री कहते रहो तो मुंह मीठा नहीं होता, अगर मिश्री खा लो तो मुंह मीठा हो जाता है। सो गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कह रहे हैं वो करो, सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं।
प्यारे इन विधि मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका।
अब श्री गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हम तजर्बा कर चुके हैं, ये कायदा परमात्मा से मिलने का नहीं। एक आदमी मिला, कहता है मैंने ग्रंथ साहब के 800 पाठ किए हैं। मैंने पूछा कि कभी रूह अंदर गई है, कभी प्रकाश देखा है, कोई नहीं। 800 पाठ किए लेकिन रूह अंदर नहीं गई, अंधे की तरह आया, अंधे की तरह चला गया, दौड़ता आया, दौड़ता चला गया, ध्यान ना दिया कि गुरबाणी क्या कह रही है। आम दुनिया पढ़ने को मुक्ति समझती है, मगर नहीं। अगर आपके पास खाना बनाने की किताब हो और आप उसे प्रेम के साथ पढ़ते जाएं कि जलेबियां ऐसे बनती हैं, पूरियां ऐसे पकती हैं या मिठाई ऐसे बनती है, तो क्या आपका पेट भरेगा या स्वाद आएगा? आप खुद ही कहेंगे कि ना तो पेट भरेगा ना स्वाद ही आएगा। अगर आप किताब के मुताबिक खाना बना लें तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आएगा। ये लोग सिर्फ पढ़ने को ही मुक्ति समझते हैं, मगर नहीं। ये जीते जी मरना है, जो कुछ करना है इसी मनुष्य जन्म में करना है, मरने के बाद का उधार नहीं। गुरु अर्जुन साहब कह रहे हैं कि ये कर्म हम पिछले जन्मों में कर चुके हैं, इनसे मुक्ति नहीं मिलती।
हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्धि विवेका।
जब किताबें पढ़ने और दूसरे कर्म करने से कुछ न बना तो हार कर परमेश्वर से विनती की कि ऐ मालिक, ऐ परमात्मा, हमें वो बुद्धि दे जिसके द्वारा तू मिलता है। आप सोचो, ये निंदा नहीं है। हमारे वेद शास्त्र क्या चीज है? ऋषि मुनि, वली पैगंबर, संत महात्मा मेहनत करके अंदर गए, पर्दा खोला, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, सचखंड पहुंचे, आत्मा का परमात्मा से मिलाप किया, परमेश्वर से मिले। जो जो नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे वे कागजों में ले आए ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। उनमें नज़ारों का जिक्र है, नज़ारे खुद नहीं। सो सारी उम्र आप पोथियां पढ़ते रहे जिनमें उन नज़ारों का जिक्र है, मगर वे नज़ारे आपके अंदर तो नहीं आए। अगर लोगों के विवाह में गीत गाते रहे मगर अपना विवाह ना हुआ तो कोई फायदा नहीं। हमें तो अपना फायदा करना है, यानी पर्दा खोलकर अंदर चढ़ना है।
मौन भयो कर पाती रहे हो, नगन फिरो बन माही।
फिर ख्याल आया कि जो आदमी बोलते नहीं, चुप या मौन रहते हैं, शायद उन्हें मालिक मिला होगा, इसलिए हमने मौन धारण कर लिया। आबादी छोड़कर जंगलों में चले गए, कपड़े और बर्तन तक भी न रखे, पेड़ों की पत्तियों को बर्तन बनाया, पत्तियों को खाया, पत्तियों का लिबास और पत्तियों का बिस्तर बनाया, यानी सब कुछ पत्तियों का बनाया, लेकिन बना फिर भी कुछ नहीं। अब मौन का जो मकसद था वो तो समझा नहीं। कागज पेंसिल हाथ में रख ली, जबान से ना कहा, लिख कर मांग लिया कि मुझे रोटी चाहिए, पानी चाहिए या कुछ और चाहिए। बात तो एक ही है,
तट तीर्थ सब धरती भ्रम्यो, दुविधा छुटके नाही।
कहते हैं गंगा यमुना गोदावरी और कई तीर्थों पर नहाते फिरे, लेकिन दुविधा उसी तरह बनी रही। मन मैले का मैला रहा, पापों की मैल उसी तरह रही। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। अगर पानी से पाप धोए जा सकते तो सभी धर्मात्मा पुरुष अभ्यास क्यों करते हैं? असली तीर्थ तो भजन करने से अंदर जाकर मिलेगा, जिसे कबीर साहब ने मानसरोवर, गुरु साहब ने अमृतसर और ऋषि मुनियों ने प्रयाग कहा है। गंगा भी अंदर है, यमुना भी अंदर है, सरस्वती भी अंदर है। ये जो बाहर अमृतसर है, हम उसे भी नमस्कार करते हैं, लेकिन गुरु साहिबानों ने अंदर अमृतसर देखकर बाहर नाम रखा है। इसी तरह ऋषि मुनियों ने अंदर देखकर बाहर गंगा यमुना सरस्वती नाम रखे हैं। ऋषि मुनियों और संतों का ख्याल था कि इन्हें देखकर ये अंदर जाएंगे, मगर ये बाहर ही रह गए। असली सामान आदमी के अंदर है, बाहर जो कुछ है नकल है। दुनिया के सभी तीर्थों की यात्रा कर ली और समझ लिया कि दुनिया की परिक्रमा कर ली, लेकिन खाली के खाली रहे, कोरे के कोरे रहे, पर्दा ना खुला, बल्कि नतीजा ये निकला कि अहंकार पैदा हो गया।
मन कामना तीर्थ जाए बसियो, सिर करवत तराए,
फिर कहते हैं कि ख्याल आया कि तीर्थ पवित्र स्थान होते हैं, जो तीर्थों में रहते हैं उन्हें मालिक मिलता होगा। हमने बड़े प्रेम के साथ तीर्थों पर मकान बनवाए और वहां रहे, स्नान किए, लेकिन बना कुछ भी नहीं। ये तीर्थ किसने बनाए? किसी न किसी महात्मा ने बैठकर भजन किया, लोगों को उपदेश दिया और सत्संग किया, वे तीर्थ बन गए। वो जगह तो पवित्र है, मगर आज ना वहां वे महात्मा हैं और ना सत्संग ही है। हम तीर्थों पर स्नान करने में ही मुक्ति समझते हैं। आप विचार करो कि मुक्ति किस तरह मिलती है। अब जिस तरह आप यहां इकट्ठे हुए हैं, अगर कहा जाए कि किताबों पर विचार करो तो क्या फायदा, लेकिन जो किताबों का मकसद है आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। अब कहते हैं कि तीर्थों का पानी भी पिया और काशी में जाकर करवत भी ली, मगर मन काबू में ना आया, अंदर परमेश्वर के दर्शन ना हुए। काशी में एक आरा होता था, वहां के पंडित क्या करते थे कि जो अमीर या कोई महाराजा चाहता था कि मैं सब कुछ दान पुण्य करके स्वर्गों या बैकुंठों में चला जाऊं, उसे वे आरे से चीर देते थे और उसका धन माल लूट लेते थे। सो वहां ये पाखंड बना हुआ था। वो आरा अब भी वहां है, मगर अंग्रेज सरकार ने बंद करवा दिया। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि ये तरीका भी ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसे इस तरह गंवा देना अकलमंदी नहीं।
मन की मैल न उतरे एह विधि, जे लख जतन कराए।
कहते हैं इसी तरह के बहुत से यत्न किए, मगर मन मैले का मैला रहा, ना पर्दा खुला, ना परमेश्वर के दर्शन हुए, ना रूह अंदर गई और ना उसे शांति मिली, कोरे के कोरे ही रहे।
कनिक कामनी हैवर गैवर, बहु विधि दान दतारा। अन्न वस्त्र भूमि बहु अर्पे, नह मिलिए हरिद्वारा।
फिर हमारे दिल में ख्याल आया कि यज्ञ तप दान पुण्य करने वालों को मुक्ति मिलती होगी। नहीं, फल जरूर मिलता है मगर मुक्ति नहीं। यहां 100 रुपया दो, आगे 1000 मिल जाएगा, सुख हो जाएगा, मगर दुनिया में आना पड़ेगा। कनक कहते हैं सोने को, सो हमने सोना दान में दिया, हाथी और घोड़े दान किए, जमीन दान की औरतें तक दान में दे दी, लेकिन परमेश्वर का दरवाजा न मिलना था न मिला। अगर दौलत से मालिक मिल जाए तो राजा महाराजा खरीदने को तैयार हो जाएं, सेठ साहूकार खरीदने को तैयार हो जाएं। अब शायद कोई ये कहे कि ये दान पुण्य की निंदा है। ये निंदा नहीं है। आप दान पुण्य करो मगर कामना रख कर ना करो, बल्कि ये कहो कि परमेश्वर ने हमें दिया है, हम विधवाओं को, अनाथों को, लूले लंगड़ों को दें। दान पुण्य बुरा नहीं, मगर अगर ख्वाहिश रख कर दोगे तो आना पड़ेगा। जिस तरह एक चोर चोरी करता है, वो पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। जब सजा भोगकर जेल से छूटता है तो हाकिम को कहता है कि मेरा चूल्हा ना फेंकना, मुझे फिर आना है। अगर बगैर आशा के दान पुण्य करोगे तो उसका फायदा यह होगा कि तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। जो आशा रख कर देते हैं उनके बारे में गुरु अमरदास जी कहते हैं, पुण्य दान जो बीज दे सब तरम राय कह जाई, मगर हम फिर आने का सामान करते हैं। सो दान पुण्य करो मगर कामना रखकर नहीं, बल्कि निष्काम होकर। दान पुण्य करने से नाम नहीं मिलता, मुक्ति नहीं होती। यहां मृत्यु लोक में दान पुण्य करने का फल यही है कि अगले जन्म में सेठ साहूकार बन जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे, 100 का 1000 मिल जाएगा, 1,00,000 मिल जाएगा। मुक्ति कब मिलती है? जब ये कम खाना, कम बोलना और रात को जागना अपना उसूल बना ले। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। नाम कोई आसानी से तो नहीं मिलता, और बिना नाम मुक्ति नहीं। ये पुण्य का खंडन नहीं, बल्कि ये निश्चय जानो कि जो अब अमीर है, जज है, वो पहले कुछ दान पुण्य करके आया है।
पूजा अर्चा बंदन दंडौत खट कर्मा रत रहता हाँ हाँ करत बंधन में परया नह मिलिए एह जुगता।
कहते हैं वेद शास्त्र पढ़े, षट कर्म किए, मगर मालिक ना मिला। षट कर्म कौन से हैं? दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। इन कर्मों का फल वापस दुनिया में आकर भोगना पड़ता है। फिर अहंकार हो गया कि मैं आलिम, मैं दानी, बीमारी और बढ़ गई। गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़या मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। ये युक्ति परमात्मा से मिलने की नहीं। अब कहते हैं कि हमें वो युक्ति मिले कि हम यहां आए ही नहीं, इस दुनिया की शक्ल ही ना देखें। बेशुमार दुनिया पूजा करती है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की, कोई पत्थर की, कोई पानी की, कोई गुग्गे यानी सांप की, कोई भूत प्रेत की, कोई कुछ और कोई कुछ। जिसकी पूजा करते हैं मर कर वहीं जाएंगे। संत महात्मा कह रहे हैं, किताबें कह रही हैं कि ये युक्ति परमेश्वर से मिलने की नहीं।
योग सिद्ध आसन 84 ए भी कर कर रहे आ वड़ी आर जा फिर जन्मे हरि स्यों संग न गया।
फिर दिल में ख्याल आया कि जो प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उन्हें परमेश्वर मिलता होगा। प्राणायाम का मकसद है सांसों को रोकना और छोड़ना। हम रोज 22,000 सांस लेते हैं। अगर हम थोड़े सांस लें तो उतनी उम्र बढ़ा सकते हैं, मगर जितने सांस लेकर आए हैं उतने ही भोगेंगे, वे बढ़ या घट नहीं सकते। योगी अपनी उम्र बढ़ाकर चले गए लेकिन मुक्ति ना हुई। मुक्ति नाम में है और नाम इसके अंदर है, ये अंदर जाता नहीं मुक्ति होती नहीं। कहते हैं कि हमने योग भी सीखा, प्राणायाम भी किया, उम्र बढ़ा ली, मगर मन कोरे का कोरा ही रहा, ना रूह अंदर गई ना मुक्ति हुई। अब हमें विचार करना चाहिए कि जब योग करने से परमेश्वर नहीं मिलता, षटकर्म करने से परमेश्वर नहीं मिलता, दान पुण्य करने से परमेश्वर नहीं मिलता, यज्ञ तप करने से परमेश्वर नहीं मिलता, किताबें पढ़ने से परमेश्वर नहीं मिलता, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
राजलीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा, सेज सोहनी चंदन चोआ, नरक घोर का द्वारा।
फिर ख्याल आया कि शायद राजा महाराजाओं को मिलता होगा, क्योंकि राजाओं में 70 पीरों की करामात होती है। हमने राज हासिल किया और बड़ी जबरदस्त हुकूमत की। जब राज मिला तो अच्छे अच्छे नाच रंग ऐशो इशरत, हंसना खेलना ही हमारा शौक रहा। फिर लौटकर यहीं आने का सामान कर लिया। जब विषय विकार भोगे तो सीधा नरकों में जाना पड़ेगा। अब सवाल पैदा हुआ कि वो कौन सा उसूल है जिससे हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए, शांति मिल जाए, हम इस दुनिया में फिर ना आए, जीते जी तसल्ली हो जाए कि हमें सीधी राह मिल गई है।
हरि कीर्ति साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा,
श्री गुरु अर्जुन साहब सब कुछ कहकर अब मतलब की बात की ओर आते हैं कि मुक्ति का जरिया हरि कीर्तन है। अब जरा गौर से समझने वाली बात है कि हरि कीर्तन क्या है। जो बाहर के बाजे हैं वे मन को खुश तो करते हैं, मगर घंटे दो घंटे के लिए। उनके साथ मन ठहर तो जाता है, मगर थोड़ा सा। मगर हरि कीर्तन मीठे से मीठा राग है, प्यारी से प्यारी आरती है, जो आपके अंदर दिन रात हो रही है। आप सो जाओ, वो नहीं सोती। वो हिंदुओं के अंदर भी है, सिखों के अंदर भी है, ईसाइयों के अंदर भी है, मतलब के स्त्री हो या पुरुष, वो सभी के अंदर है। आप सोचो, जब हमारे हाथ, कान, नाक, मांस कुल दुनिया के एक जैसे हैं, तो मन और रूह भी एक जैसे हैं, और अंदर कीर्तन भी एक ही है। अगर कुछ फर्क है तो रंग का। जो ठंडे मुल्कों के रहने वाले हैं उनका रंग गोरा है, और बाकी मुल्कों के लोगों का रंग दर्जा बदर्जा काला है। ये नहीं कि हिंदुओं का और है और मुसलमानों का और है, क्योंकि एक ही मसाला है। अब कहते हैं कि वो हरि कीर्तन चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, और डाकुओं के अंदर भी है। वो दिन रात हो रहा है, मगर हमें कोई फायदा नहीं। जिस तरह आपके घर के अंदर हजारों रुपए दबे हुए हों, मगर आप बाहर कौड़ी कौड़ी मांगते मर जाएं, तो उन रुपयों का आपको कोई सहारा है? कोई नहीं। इसी तरह परमात्मा ने वो दौलत सबके अंदर रखी हुई है। अगर कोई महात्मा बता दे कि आपकी दौलत यहां पड़ी हुई है और आप उसे निकाल लें, तो आप अमीर हो जाएंगे। दौलत तो सबके अंदर है, मगर हम निकालते नहीं। वो दौलत, वो मुक्ति का सामान ना वेदों में है, ना शास्त्रों में, ना जंगलों में, ना पहाड़ों में, बल्कि आपके अंदर है। जब तक आप अंदर नहीं जाते, वो नहीं मिलती। हमें क्या करना चाहिए? हम किसी महात्मा से मिलें, वो हमें अंदर जाने की राह बताएं, और हम अपने अपने मजहब में रहते हुए अंदर जाकर उस राग को सुनें, ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। हिंदू हिंदू होकर रहें, मुसलमान मुसलमान होकर रहें, और ईसाई ईसाई होकर रहें। ज्यों ज्यों सुनोगे त्यों त्यों लज्जत आएगी। कौड़ी खर्च नहीं होती, मरने के बाद का उधार नहीं। बाकी जितने मजहब हैं मरने के बाद मुक्ति बताते हैं, मगर संत मत ये नहीं कहता, बल्कि ये कहता है कि अभी कर, अभी ले। ऋषि मुनि कहते हैं कि तेरे अंदर राग हो रहा है, वेद शास्त्र कहते हैं कि तेरे अंदर राग हो रहा है, उसके बगैर बाकी सब कहानियां हैं। ज्यों ज्यों अंदर जाओगे रोशनी बढ़ती जाएगी, फायदा होगा। कुरान शरीफ कहता है कि तुम्हारे अंदर सिरातुल मुस्तकीम यानी सीधी राह है, 14 तबक हैं, 14 लोक हैं, मगर हम सब कुछ भूल गए हैं। हमें दुनिया का नशा चढ़ा हुआ है, बाल बच्चों का नशा चढ़ा हुआ है। जब तक हम 9 दरवाजे छोड़कर 6 चक्रों को तय करके आंखों से ऊपर नहीं जाते, तब तक वो राग सुनाई नहीं देता। अगर एक बार मेहनत करके ऊपर चढ़कर आधा घंटा भी सुन लें तो काम क्रोध सो जाते हैं और जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। ये सबसे श्रेष्ठ और ऊंचे से ऊंचा कर्म है, सारे संसार के लिए है, सबकी जायदाद है। यही गुरु नानक साहब, कबीर साहब और दूसरे फकीर कहते हैं। मैं कहता हूं कि दुनिया अंधी है, वो संतों की पहचान कर ही नहीं सकती। जो तालिब इल्म यानी विद्यार्थी प्राइमरी में पढ़ता है, वो बीए एमए की तालीम को क्या समझ सकता है। वो मालिक जब भी दुनिया में आएगा, आदमी की शक्ल में ही आएगा। इसके विपरीत अगर वो फरिश्ता बनकर आए तो भी हम उसे देख नहीं सकते। गाय भैंसें हमें समझा नहीं सकती, आदमी को आदमी ही समझा सकता है। इसलिए जब वो आदमी बनकर आएगा तभी हम समझ सकते हैं। सो ऐसा परमेश्वर रूप साध कोई कोई ही है। गुरु अर्जन देव जी ने यूं ही नहीं कहा, चरण साध के तोए तोए पियो, अरप साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। दुनिया साधों को ढूंढती है, मैं कहता हूं कि पूर्ण साध पार ब्रह्म में जाकर बनता है। साधों की निशानी नाम का जपना और जपाना है। सो गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि सारी इबादतों से ऊंची इबादत कौन सी है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि उस आकाशवाणी के साथ अपनी रूह को जोड़ना जो इसके अंदर हो रही है। मुक्ति का कोई और साधन दुनिया में है ही नहीं। अगर कोई मुक्ति देने वाली ताकत है तो वो है, वो हरेक के अंदर है। जिस तरह विद्या की ताकत बगैर उस्ताद के नहीं मिलती, उसी तरह नाम की दौलत बगैर गुरु के नहीं मिलती। कई ऋषियों ने कहा कि हम तपस्या करके अंदर जाएंगे और मालिक से मिलेंगे, मगर सब धोखा खा गए। जिक्र है कि श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, यहां तक कि जब भूख बहुत तंग करती तो 8 पहर में एक बार पेड़ को चाट लेता था। मगर नतीजा क्या हुआ? राजा दशरथ की भेजी हुई औरतों ने साथ ले जाकर यज्ञ करवा लिया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मेनका परी ने आकर शकुंतला पैदा कर दी, जिसका शकुंतला नाटक आप रोज बाजारों में देखते हैं। मन लज्जत का आशिक है। हम 9 दरवाजों में बैठे हैं, 2 सुराख कानों के, 2 नाक के, 2 आंखें, 1 मुंह और 2 नीचे के। जब तक हम 9 दरवाजों से ऊपर नहीं जाते, नाम नहीं मिलता। जब हमें कोई महात्मा मिले, हम कमाई करें, 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर पहुंचे तो नाम मिलता है। यहां तक पहुंचना इसका अपना धर्म है। जब ये अपना धर्म पूरा करेगा तब वो लज्जत आएगी। वो लज्जत, वो मुक्ति का सामान अंदर है।
कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लहना।
अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि वो है तो सबके अंदर, मगर उसको लेता कौन है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि जिसके बड़े ही ऊंचे भाग्य हों। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, तोर कर्म पाया तुत जिनको, सह नाम हरि कह लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। जिनके बड़े श्रेष्ठ कर्म हों वे नाम की ओर आते हैं। ऋषि मुनि, संत महात्मा, फकीर जिसकी महिमा करते हैं वो नाम है। باہر سے لانا نہیں، آپ کے اندر ہے، آپ کی چیز ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ نکالتا کون ہے؟ جس کے بڑے اونچے بھاگی ہوں، جسے پرمیشور مکتی دینا چاہے۔ اب یہ دولت چوروں، ٹھگوں، ڈاکوؤں کے بھی اندر ہے، استریوں کے بھی اندر ہے، پروشوں کے بھی اندر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے اندر ہے، مگر جب تک محنت نہ کریں ملتی نہیں۔ یہ نہ ویدوں میں ملتی ہے، نہ مول ملتی ہے، اور نہ کھیتوں میں اگتی ہے۔
تیروں سیوک اے رنگ ماتا،
اب شری گرو ارجن صاحب کہتے ہیں کہ جو اندرونی راگ، آکاش وانی اور کلمے کو سن کر اس رنگ میں رنگ جائے، وہ رب کا بندہ ہے، ویسے کوئی جیو اس سے خالی نہیں۔ اب اپنے اپنے من میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اندر جاتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اب کہتے ہیں کہ چاہے مسلمان ہو کر جاؤ، چیز سب کے اندر ہے، مگر ہم اندر نہیں جاتے۔ جو اندر جا کر اس نام کے رنگ میں رنگ گیا، وہ مالک کا بندہ ہے، اس کا وصال ہوتا ہے، باقی سارے سنسار کے لوگ من کے بندے ہیں۔ اگر مسلمان رنگے گئے تو اسی رنگ سے، اگر ہندو رنگے گئے تو اسی رنگ سے، سارے مہاتما یہی کہہ رہے ہیں، اور چاہے کتنا پاٹھ کر لو، پڑھ لو، مکتی نہیں ہوگی۔ مکتی جب ہوگی، نام کی کمائی سے ہی ہوگی۔ یہی مسلمان فقیر ہوکا دے رہے ہیں کہ وہ مالک تیرے اندر ہے، مگر ہم کھوجتے ہیں اجاڑوں اور پہاڑوں میں، تو ملے کیسے؟ جب تک ہم اندر نہیں جاتے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہ آنکھیں فنا یعنی ناشوان ہیں، اور بذات خود یعنی اپنے آپ روشن نہیں۔ جس جگہ سورج، چندرما، تارے، بجلی یا لیمپ آدی پانچوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، وہاں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ابھی ہم سورج کے آسرے دیکھ رہے ہیں، رات کو چندرما کے آسرے دیکھیں گے یا بجلی، ستاروں اور لیمپ کے؟ پھر ایک ستسنگی نے پوچھا، حضور میرا اندر کا دروازہ بند ہے۔ مہاراج جی نے فرمایا، اندر کا دروازہ کون کھولتا ہے؟ وہی ستسنگی کہنے لگا، ستگرو، مرشد۔ پھر مہاراج جی نے فرمایا، یوں نہیں، دوائی تجھے دے دی ہے، اگر تو نہ کھائے تو بیماری دور نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کبھی بیمار کی بیماری نہیں لیتا، تجھے دوائی ملی ہے یا نہیں؟ شرم کی بات ہے، جس کے پاس دوائی ہو وہ پھر بھی نہ کھائے، اگر نہیں کھاتا تو اس کی غلطی ہے۔
پیو کرپال دین دکھ بھنجن، ہر ہر کیرتن اے من راتا۔
اب گرو ارجن صاحب کہتے ہیں کہ جس کا من اس رنگ میں رنگ جائے، اس کو پرمیشور دروازہ کھول کر گلے سے لگا لیتا ہے، اس کی مکتی ہو جاتی ہے۔ سارے سنسار کے لیے ایک ہی دوا ہے۔ جب پرماتما ایک ہے تو اس کے ملنے کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ وہ مالک باتوں سے مل جائے، مگر باتوں سے وہ ملتا نہیں۔ کئیوں نے گرنتھ صاحب کے سو سو پاٹھ کیے ہیں، مگر یہ نہیں سوچا کہ وہ کہتا کیا ہے۔ نہ اندر گئے، نہ اندر کی راہ کھوجی، مگر باہر باجے بجا بجا کر عمر گنوا دی۔
کہو نانک تس بھیو پراپت، جس پرب لکھے کا لہنا، تیروں سیوک اے رنگ ماتا۔ بھیو کرپال دین دکھ بھنجن، ہر ہر کیرتن اے ہو من راتا۔